পঞ্জাবী হাই, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, গোপীজন বল্লভ গিরি বরধারি, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীরাবন চারি, যমুনা তীরাবন, যমুনা তীরাবন চারি, যমুনা তীরা, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, গোপীজন বল্লভ গিরি বরধারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, গোপীজন বল্লভ গিরি বরধারি, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীরাবন চারি, যমুনা তীরাবন চারি, যমুনা তীরাবন চারি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Giri Varadhari Jai Om Shnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtotar Shatasthi Srimadhis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki ISKCON and Deputy Founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा मई यमुना मई की भक्ति देवी तुलसी देवी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर प्रेमानंद समवेत गौर भक्तवृंद की समवेत गौर भक्तवृंद की समवेत गौर भक्तवृंद की श्री गुरु एंड श्री गौरांग की निताय गौर प्रेमानंद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध से अध्याय क्रमांक 7। अध्याय का शीर्षक है प्रह्लाद ने गर्भ में क्या सीखा। श्लोक संख्या 21। स्वर्णं यथाग्रा वसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः अध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। स्वर्णं यथाग्रा वसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैर् अध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। स्वर्णं यथाग्रा वसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैर् अध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। स्वर्णं यथाग्रा वसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैर् अध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की स्वर्णम सोने को यथा जिस प्रकार ग्रावसु स्वर्ण खनिज के पत्थरों में हेमकार स्वर्ण के विषय में जानने वाला विशेषज्ञ क्षेत्रेषु सोने की खानों में योगै ही विभिन्न विधियों द्वारा तत् अभिज्ञ जानकार जो यह जानता है कि सोना कहाँ है आपनुयात सरलता से प्राप्त कर लेता है। क्षेत्रेषु भौतिक खेतों में देहेषु मनुष्य शरीरों तथा शेष 84 लाख योनियों में तथा उसी प्रकार आत्मयोगैः ही आध्यात्मिक विधियों से अध्यात्मवित आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को समझने में पटु ब्रह्मगतिम आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि लभेत प्राप्त कर सकता है। अनुवाद। एक दक्ष भूमि ज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और वह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। तात्पर्य। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मूर्ख दुर्भति दुर्मति लोग जिनमें तथाकथित ज्ञानी, दार्शनिक तथा विज्ञानी सम्मिलित हैं, शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहता है। वेदों का आदेश है, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत। आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित न हुआ हो, वह पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो जाता, वह आत्मा तथा पदार्थ के विषय में कुछ नहीं समझ सकता। यहाँ पर कहा गया है, योगैस्तद अभिज्ञः। इससे सूचित होता है कि जिसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से रहता है, वह समझ सकता है कि शरीर के भीतर आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु जिसमें जीवन के प्रति पशुवत धारणा रहती है और आध्यात्मिक संस्कृति रहती है, नहीं वह इसे समझ सकता है। एक दक्ष खनिज वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री यह समझ सकता है कि सोना कहाँ कहाँ है, और उसे निकालने के लिए वह धन लगाता है एवं खनिज में से रासायनिक विधि से सोना निकाल लेता है। उसी तरह दक्ष अध्यात्मविद तत्ववेत्ता भी समझ सकता है कि पदार्थ के भीतर आत्मा कहाँ है। जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता, वह सोने तथा पत्थर में अंतर नहीं बता सकता। इसी प्रकार जिन मूर्खों तथा धूर्तों ने दक्ष गुरु से यह नहीं सीखा कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने के लिए उस मनुष्य को योग प्रणाली में या अनंत भक्ति योग प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। जब तक कोई भक्ति योग की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतएव भगवद गीता में निम्नलिखित शिक्षा सिखाने से प्रारंभ होती है। देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार पहला उपदेश है कि शरीर के भीतर आत्मा रहता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान का यह शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा इसे समझने की परवाह नहीं करता, वह देहात्म बुद्धि में पशुवत जीवन की विचारधारा में पड़ा रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की गई है, यस्यात्म बुद्धि ही कुणपे त्रिधातु की स एव गोखरः। मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भगवद गीता के उपदेशों को समझना चाहिए, क्योंकि यही एक साधन है जिससे कोई आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और स्वतः इस मिथ्या भ्रामक ज्ञान को त्याग सकता है, जिसके कारण वह सोचता है मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, अहम ममेति। कुकरों की सी इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये नित्य संबंधित है। इस प्रकार जीवन की समस्याएं हल करके मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे प्रथम जो भी भक्त सुन रहे उनसे मैं याचना करता हूँ कि वो मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाए ताकि मैं ये श्रीमद् भागवतम क्लास देने की जो सेवा है वो ठीक ढंग से कर सकूं। तो अभी परसों हम नरसिंह चतुर्दशी मनाने जा रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में कल से ये कथा चालू हुई है। तो कल सुंदर श्याम प्रभु ने प्रह्लाद महाराज की जो स्तुतियां हैं, प्रार्थना, जब भगवान की जो स्तुति 9वें अध्याय से कुछ श्लोकों के ऊपर उन्होंने चर्चा की, तो आज मैं 7वें अध्याय के कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा करूंगा। तो जैसा कि इसके पार्श्वभूमि में प्रह्लाद महाराज बचपन में ही अपने सहपाठियों को जब भी ऐसा ब्रेक मिलता था, उनके टीचर्स किसी काम में व्यस्त हो जाते थे या नहीं आ पाते थे, तो उस पीरियड में, उस कालावधि में प्रह्लाद अपने सहपाठियों को या जो स्टूडेंट्स है उनके साथ पढ़ने वाले, तो उनको भागवत धर्म के बारे में प्रचार करते थे। तो ये 6 अध्याय के शुरुआत में पहले ही श्लोक में उनका उपदेश क्या है तो ये बताया है। श्री प्रह्लाद उवाच 7वां स्कंध 6 अध्याय श्लोक क्रमांक 1। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। तो इसमें वो बताते हैं कि आचरित, आचरण करना चाहिए। तो किसमें आचरण करना चाहिए? मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म में ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये अर्थदम बहुत अर्थपूर्ण है, इससे बहुत विशेष चीज हमको प्राप्त हो सकती है, इसलिए अर्थदम। लेकिन साथ साथ वो अध्रुवम, वो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। और दूसरी बात, ये दुर्लभम, ये बहुत आसानी से बार बार मिलने वाला भी नहीं है, तो इसलिए ऐसी अवस्था में व्यक्ति ने आचरण करना चाहिए। किसका आचरण करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए। जो तथाकथित लौकिक न्याय है उसमें भी बताया जाता है, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री गौर निताय। तो जो तथाकथित शिक्षाएं हैं उसमें भी बताया जाता है कि धर्मम चर सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो और धर्म के पथ पर ही चलो। महाभारत में भी कुंती देवी यही प्रार्थना करती है कि कुछ भी हो जाए मेरे पुत्र धर्म के पथ से कभी भी च्युत न हो, ऐसी उसकी प्रार्थना रहती थी। तो यहां पर बोला है कि आचरित, आचरण करो, धर्म का नहीं लेकिन भागवत धर्म का ही आचरण करो, और वो भी कौमारे, कौमार अवस्था में ही, बचपन में ही। तो स्वयं प्रह्लाद महाराज की छोटी अवस्था में ही इसका पालन कर रहे थे। तो ये भी विशेष बात है कि बहुतांश बच्चे छोटी अवस्था में खेलकूद में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन प्रह्लाद महाराज की ये विशेषता है, ये ऐसा यूनिक केस है कि सामान्यता नहीं देखा जाता। तो तो जैसे कि लोग कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कुछ यूनिक बच्चे रहते हैं, बचपन से ही उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहती है, और वो एबैकस, आजकल एबैकस क्लासेस बहुत फेमस हो रहे हैं, जो मैथमेटिक्स बड़ा लंबा इक्वेशन वो एक ही बार बताते हैं और उसका आंसर, वो इक्वेशन या जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते ही वो प्रश्न का उत्तर देते हैं। या कुछ बच्चे सिंगिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको सिखाने या नहीं जाता, लेकिन वो बचपन से ही उनको अपने आप संगीत का ज्ञान होता है। या कुछ बच्चे ऐसे ही कुंफू कराटे इसको कैसे करना है, इसका भी उनको जन्मतः या बहुत कम उम्र में, एक केस मैंने सुना था, 7 साल का एक जापानीज बच्चा है, वो ये कुंफू में इतना एक्सपर्ट है कि वो ब्रूसली को एग्जैक्ट उसका इमिटेट करता है, वो पीछे ब्रूसली की जो मूवी है वो चलती है और आगे बिना देखे वो ऑडियंस की तरफ देखता है, उसके पीछे वो मूवी चल रही है और उसके एक्शंस ऐसे है 9 चॉपर वगैरह लेके कि वो एग्जैक्टली वो ब्रूसली को इमिटेट करता है 7 साल का। तो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं लोग, और ये हो सकता है, पॉसिबल है ये। लेकिन जब ये आध्यात्मिक बातें प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को इतनी कम उम्र में बता रहे हैं, तो इसमें लोग कुछ शंकाएं, डाउट्स करते हैं। भौतिक जीवन में ऐसे यूनिक बच्चों का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ही लोगों को बहुत डिफिकल्टी जाती है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए, ये बताते प्रहलाद महाराज। और वो भागवत धर्म क्या है उसका विश्लेषण अगले 4 श्लोकों में करते हैं। यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानाम् प्रिय आत्मेश्वरः सुहृद्। तो इसमें ही यथा ही पुरुषस्येह, या जिससे इस जगत में, यह विष्णोः पादः, विष्णु के पाद उपसर्पणम्, विष्णु के चरण कमलों का उपासना करना ये योग्य ही है, क्योंकि यत येश, क्योंकि वही ये विष्णु ही सर्वभूतानाम प्रियः, सभी जीवात्माओं के, सभी प्राणियों के बहुत प्रिय हैं। आत्म, उन्हीं के कारण ये जीवात्माएं सब कार्य कर पा रहे हैं। और ये विष्णु ही ईश्वर है, उनके स्वामी है ईश्वर है, और सुहृत, उनके हितैषी ये विष्णु है, इसलिए उनकी सेवा करना एकदम योग्य है। तो इनकी सेवा करेंगे तो फिर बाकी जो चीजें या सुख प्राप्ति के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उसके बारे में अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं। सुखम ऐन्द्रियकम् दैत्या देह योगेन देहिनाम् सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः। तो इसमें बोलते हैं कि यथा, जिस प्रकार दुःखम्, दुःख अयत्नतः सर्वत्र लभ्यते दैवात्, तो भाग्य से अयत्नतः प्रयास किए बिना ही जिस प्रकार सभी जगह, यानी कि सभी योनियों में, मनुष्यों योनियों में और प्राणियों के योनियों में भी प्रयास किए बिना ही दुख प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार ये सुख भी देह योगेन देहिनाम, देहधारियों को ये देह के माध्यम से सुख भी प्राप्त होगा। तो ये सुख प्राप्ति के लिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्भुजम्। तो ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास न कर्तव्यो, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, क्योंकि ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास, बहुत ओवर एंडेवर, अति प्रयास करना, ये क्या है, यतः आयुः व्ययः परम, समय और आयु की बड़ी, परम आयु या परम व्यय, बहुत बड़ा व्यय या वेस्टेज है ऐसा, केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास करना। अगर ऐसा कोई करता है, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो वो न तथा विन्दते क्षेमम, तो उसका परम कल्याण नहीं होगा। लेकिन मुकुंद चरणाम भुजम क्षेमम विन्दते, मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करने से उसका परम कल्याण होगा। और आखिरी श्लोक में बता दें, यतो ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवम आश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम्। तो दो शब्द, कुशलः जो व्यक्ति बुद्धिमान है, और भवम आश्रितः इस भौतिक जगत में, भवम आश्रितः वो अभी इस भौतिक दुनिया में है, या दूसरा एक शब्द है भयम आश्रितः, जिसका मन में हमेशा भय लगा रहता है, ऐसा कुशलः भयम आश्रितः या भवम आश्रितः क्षेमाय परम कल्याण के लिए यतीत उसने प्रयत्न करना चाहिए। कब तक? यावत पुष्कलम पौरुषम शरीरम न विपद्येत, जब तक ये शरीर जो कि स्ट्रांग, पुष्कलम और पौरुषम स्टाउट एंड स्ट्रांग बहुत शक्तिशाली है, जब तक इसमें ताकत है, और जब तक ये न विपद्येत गिर नहीं जाता, जमीन पर गिरता नहीं, तब तक उसने यतीत प्रयास करते रहना चाहिए। तो आगे बताते कि कैसे व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष है, ये अगर माना जाए, पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस तद अर्धम चाजितात्मनः निष्फलम यद असो रात्र्याम शीतेन्धम प्रापितः तमः। तो 100 वर्ष आयु मानी जाए तो उसमें से अर्धम 50 वर्ष किसमें निकल जाते हैं, वो शीते सोने में ही वो 50 वर्ष बिता देता है। और फिर अगले 20 साल मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशति, विंशति ही यानी कि 20 साल, तो वो 20 साल कैसे बिताता है, मुग्धस्य बाल्ये बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, खेल कूद में उसके 20 साल चले जाते हैं। और फिर आगे 20 साल जरया ग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति ही, दूसरे विंशति ही 20 साल जरया बुढ़ापे में बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां या चिंताओं में उसके और 20 साल निकल जाते हैं। तो 50 20 20 90 साल चले गए ऐसे। तो अभी बचे हुए इसमें कैसे जाते हैं, वो दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्या पयाति ही। तो जो बाकी 10 साल है वो अलग अलग कामनाओं की पूर्ति करने में, जो कि बहुत कठिन है, दुरापुरेन कामेन मोहेन बलियसा शेषम, शेषम यानी कि बचे हुए 10 साल गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य, तो जो बहुत पागल है, गलत चीजों के प्रति आसक्त हो जाता है, ऐसे आसक्तियों को पूरा करने के लिए या इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके 10 साल चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उसका ये आध्यात्मिक क्षेत्र में मुड़ना और उसके इंद्रियों के ऊपर वश होना, ये गलत आसक्तियों को, स्नेह के पाशों को काटना, ये बहुत कठिन है, बहुत ये कार्य कठिन है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो ऐसे बहुत गहरी आसक्तियों को वो काट सकता है, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। तो ये डिटैचमेंट, असंग का शस्त्र जो तलवार है वो लेकर ये आसक्तियों को काट सकता है। तो ये सब उपदेश प्रह्लाद महाराज अपने सहपाठियों को दे रहे हैं, और इस अध्याय के आखिरी के कुछ श्लोकों में वो बताते हैं, विशेष करके ये श्लोक नंबर 28, उसमें प्रह्लाद महाराज बता रहे हैं, श्रुतम एतन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मं भागवतं शुद्धं नारदादेव दर्शनात्। तो श्रुतम एतन, ये जो ज्ञान है, एतन ज्ञानम पूर्वम मया, ये जो ज्ञान है पहले ही मैंने विज्ञान संयुतम उसके साक्षात्कार के साथ नारदात नारद मुनि से, नारदात एव दर्शनात उनके दर्शन से या उनके से मैंने ये शुद्ध भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये श्लोक सुनने के बाद प्रह्लाद के जो मित्र हैं वो पूछ रहे हैं उनको अगले दो श्लोकों में, श्री दैत्य पुत्राः उचुहु। तो ये सभी जो असुर के पुत्र, असुरों के पुत्र है, वो क्या पूछ रहे हैं, प्रह्लाद त्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुं एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानाम अपि ईश्वरौ। तो हे प्रह्लाद, त्वं च वयं अपि, तुम भी और हम भी, तो एताभ्याम जो षंड और अमरक ये दो है, इसलिए एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम, तो हमारे गुरु के ये दो पुत्र जो कि बालानाम अपि ईश्वरौ, तो हम सभी बालकों के ये नियंत्रक ईश्वर भी है और गुरु भी है, शिक्षा देने वाले भी है और शासन करने वाले भी है। तो एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम अन्यम या इनके अलावा, हृते अन्यम गुरुम न विद्म है, इनके अलावा कोई अन्य गुरु हमें पता नहीं है। तो ये पहली बात। और अगले श्लोक में, बालस्य अंतःपुरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दीनः संशयं सौम्य स्याच्चेद् विश्रम्भकारणम्। तो बालस्य, एक तो तुम बालक हो और पुरस्थस्य, ये राजमहल के बाहर तुम कभी गए नहीं हो या हम भी गए नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में ये समझ पाना बहुत कठिन है। दुरन्वयः, महत संगो दुरन्वयः, कि ऐसे नारद मुनि के महान संघ का आपको लाभ हुआ ये जान पाना बहुत कठिन है। दुरन्वयः, तो अगर इसके समाधान का विश्रम्भ कारणम स्यात्, विश्रम्भ यानी कि ये संशय दूर होने का अगर कुछ कारण है, विश्लेषण है, तो हमारा ये संशय न, यानी कि हमारा छिंद ही संशयम छिंद ही, हमारे संशय को आप दूर करो। तो ये सुनने के बाद फिर अगले अध्याय की शुरुआत होती है, सातवें अध्याय की, इसमें नारद मुनि बोलते हैं, एवं दैत्यसुतः पृष्ठो महाभागवतो सुरः उवाच तान् स्मयमानः स्मरन् मद् अनुभाषितम्। तो नारद मुनि स्वयं बता रहे युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार, एवं दैत्यसुतः पृष्ठो, ये दैत्यों के पुत्रों के द्वारा, दैत्यसुतः पृष्ठो महाभागवतः असुरः, महान भगवान के भक्त प्रह्लाद महाराज, हालांकि शब्द असुर है लेकिन वो प्रह्लाद महाराज महान भक्त, दोनों ऐसे विरोधाभास है, असुर भी है और महाभागवत है। तो उन्होंने तान उवाच, सभी बच्चों को संबोधित करते हुए, स्मयमान, थोड़ा सा स्मित उनके चेहरे पर था, और मद अनुभाषितम स्मरण, मैंने जो पहले बताया था उसका स्मरण करते हुए, उन सबको संबोधित करते हुए ना प्रह्लाद महाराज ने कहा। तो इसका विश्लेषण आगे, ये श्लोक क्रमांक दो से ये अध्याय के अंत तक है, लेकिन इसके पहले 16 श्लोकों में, दो से लेकर 17, ये 16 श्लोकों में प्रह्लाद महाराज पहले जरा बैकग्राउंड बताते हैं, जरा उनका जो प्रश्न था पहला उसका उत्तर देते हैं, और वो उत्तर देते देते उनके मन में और एक प्रश्न आ जाता है, तो तो उसका समाधान करने के लिए और विश्लेषण करते हैं। तो बताते कि कैसे पितरी प्रस्थिते अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुः विबुधा दानवान प्रति। तो दानवों के प्रति विबुधा यानी कि देवताओं ने युद्ध उद्यमम परम युद्ध उद्यमम चक्रुः बहुत बड़ा युद्ध करने की जो तैयारी है उन्होंने चालू की। कब? जब मेरे पिता पितरी अस्माकम मेरे पिता मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए जब गए तब उन्हों देवताओं ने ये बड़ा युद्ध की तैयारी की। और उधर मेरे पिता को क्या हुआ कि उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की कि वो तपस्या में इतने वो मग्न हो गए कि चींटियों ने ही उनके शरीर को पूरी तरह से खा लिया। तो ये अवस्था को देखकर देवताओं ने क्या सोचा इसका वर्णन वो अगले श्लोक में करते हैं। पिपीलिकैर अहिर इव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो अभक्षीति वदन्तो वासवादयः। तो वासवादयः यानी कि इंद्र इत्यादि उन्होंने वदन्तो घोषणा की कि ये जो हिरण्यकशिपु है ये अहिर इव अहि यानी कि सर्प इव जिस प्रकार पिपीलिकैः ही यानी कि चींटियों के द्वारा एक सर्प मारा जाता है उसी प्रकार से अनेक प्रकार के पापों के द्वारा पापेन पापः अभक्षिति या अभक्ष अनेक प्रकार के पापों के द्वारा ही ये पापी हिरण्यकशिपु की जो कि लोक उपतापन है लोगों को बहुत पीड़ित कर रहा था तो ये पापों ने ही उसको खा लिया है उसको मार दिया है। तो ये देवताओं का आक्रमण देखकर ये जो असुर है वो इतने भयभीत हो गए कि वो अपने पुत्र पत्नी ग्रह सबको त्याग कर प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वार्थ के कारण ही वो सब उनकी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। और उसी समय वो हिरण्यकशिपु के महल में गए देवता लोग और उधर उन्होंने सभी चीजों को लूटना नष्ट करना चालू किया। और उसी समय इंद्र ने क्या किया मेरी माता को पकड़कर वो उसको ले जाने लगे। और उसी समय नारद मुनि वहां पर पहुंचे और नारद मुनि ने कहा क्या उन इंद्र को कहा प्राह नैनाम सुरपते नेतुर नेतुम अर्हस्य नागसम मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम। हे इंद्र तुम इस अनागसम निरअपराध श्री को नहीं लेके जा सकते ये योग्य नहीं है उसको लेके जाना तो हे महाभाग इस पतिव्रता श्री को तुम तुरंत छोड़ दो। लेकिन इंद्र ने कहा कि इसके जठर में अस्यास आस्ते अस्या जठरे वीर्यम अविषह्यम दुर सुर सुरद्विषः आस्यताम यावत् प्रसवम मोक्षे अर्थ पदवीं गतः। तो अस्याः जठरे इसके जठर में अविषह्यम बहुत भारी या बहुत शक्तिशाली सुरद्विषः देवताओं को द्वेष करने वाला ऐसा ये वीर्य है। तो यावत् प्रसवम आस्यातम जब तक ये बच्चे को प्रसव नहीं देती ये बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक मैं इसको मेरे पास रखता हूं। और अर्थम पदवीम गतहा जब ये बच्चे का जन्म होकर मैं उसकी हत्या करूंगा तब मैं आपको उसको दे दूंगा। लेकिन नारद मुनि बोलते हैं कि अयम निष्किल विषह साक्षान महाभागवतो महान त्वयान प्राप्स्यति संस्थाम अनंतानुचरो बलिहि। तो ये जो बालक है ये क्या है अनंतानुचर भगवान अनंत का अनुचर या उनका परम भक्त है बलि यानी कि बहुत महान भक्त है। तो त्वया संस्थाम न प्राप्स्यति तो तुम्हारे द्वारा इसको मारना संभव ही नहीं है। तो ये बात नारद मुनि बताते हैं, तो इंद्र भी तुरंत इस बात को स्वीकार करते हैं। इति उक्तस्ताम विहाय इंद्रो देवर्षेर मानयन वचः, तो इंद्र देवर्षे वचः मानयन, तो इंद्र भी ये देवर्षि नारद मुनि का वचन स्वीकारते हैं। तो यहां पर एक हम बात नोट कर सकते हैं कि ये इंद्र इत्यादि देवता वगैरह ये पूरे विश्व के प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवान की इच्छा क्या है वो पता नहीं है। लेकिन जो नारद मुनि की जो प्रशासन में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, और वो परम भक्त होने के कारण उनको भगवान की इच्छा क्या है वो पता है। और इंद्र भी ये बात को स्वीकारते हैं कि मैं ये जगत का प्रशासक, सब देवताओं का प्रमुख हूं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये नारद मुनि को मालूम है, इसलिए मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। तो इंद्र ये बात को स्वीकारते हैं और फिर अनंत प्रिय भक्ति नाम परिक्रम्य दिवम ययो, तो इंद्र ये कयाधु जिसके गर्भ में प्रह्लाद महाराज थे उसको परिक्रमा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और फिर अपने स्वर्गलोक चले जाते हैं। तो फिर ये नारद मुनि मेरी माता को लेके गए और फिर उन्होंने दो चीजों का ज्ञान मेरी माता को और मुझको भी दिया। तो श्लोक नंबर 15 में प्रह्लाद महाराज कहते हैं, ऋषि ही कारुणिकस्तस्यः प्रादाद उभयम् ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम अप्युद्दिश्य निर्मलम्। तो प्रादात, तो नारद मुनि ने उभय प्रादात, तो दो चीजें उन्होंने प्रदान की। तो क्यों किसने प्रदान की नारद मुनि के लिए? ऋषि ही और ईश्वर। तो हालांकि वो भगवान के स्तर पर नहीं है, लेकिन भगवान जैसा कार्य गर्भ में होते हुए भी, गर्भ की अवस्था में तो वो बाल की आंखें भी खुली नहीं रहती, उसको होश नहीं रहता वो कैसे स्थिति में है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने दो चीजें उभय, तो उभय यानी कि दो, ज्ञानम और धर्मस्य तत्वम च, तो उनको ये धर्मस्य तत्वम यानी कि भक्ति लक्षणम और ज्ञानम यानी कि आत्म अनात्म भेद ये क्या है इसका, माम अपि माता को बता रहे थे लेकिन मुझको भी उद्देश्य कर ये निर्मलम ज्ञानम प्रादात, तो ये पूरी तरह से प्रादात प्रदान किया। तो ये बच्चों के मन में ये विचार आ सकता है कि गर्भ की अवस्था में ये ज्ञान कैसे तुमको प्राप्त हुआ, तो और माता वो भूल गई लेकिन तुमको कैसे याद रहा ये। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर वो अगले दो श्लोक में बताते हैं। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् श्रीत्वात् मातुस्तिरोधदे ऋषीणाम् ऋषीणा अनुग्रहितं माम् नाधुनाप्य अजहात् स्मृतिः। तो काल के प्रभाव से और श्री होने के कारण मातुः तिरोधदे, उसके हृदय से या दिमाग से ये सब नॉलेज चला गया, तिरोधान हो गया, लेकिन ऋषीणा अनुग्रहितं माम्, लेकिन ये नारद मुनि का विशेष कृपा अनुग्रहीतम माम अधुना अपि अभी भी। तो जब प्रह्लाद महाराज ये बता रहे थे तो उनकी उम्र 5 साल से ज्यादा थी, 8-10 साल तो पक्का होगी। तो माँ मेरी जो स्मृति है, स्मृति ही अजहात, वो अभी तक चली नहीं गई। तो ये विशेष बात है कि गुरु की कृपा से ही कुछ चीजें हम याद रख पाते हैं, और गुरु की इच्छा जितनी तीव्र हो उतनी हद तक जो सुनने वाला है वो चीजों को याद रख पाता है, हालांकि उनकी तो इच्छा हमेशा तीव्र रहती है। तो यहाँ पर तीनों को कॉम्बिनेशन, भगवान की इच्छा है, नारद मुनि की इच्छा है और स्वयं प्रह्लाद महाराज जो गर्भ में है, तो उनकी, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से ये संभव हो पाया कि गर्भ की अवस्था में ही जो कुछ सुना वो सब याद प्रहलाद महाराज को रहा। तो एक शास्त्र में दूसरा उदाहरण मिलता है कि अभिमन्यु ने भी माता के गर्भ में ये चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है ये सुना और उसको आगे याद भी रहा। तो ये शास्त्रों के ऐसे उदाहरण हैं कि जिसके जिसको सुनने के बाद हमारी जो श्रद्धा है वो सच में कितनी है इसके ऊपर हम खुद विचार कर सकते हैं। और ये है क्योंकि इतने सारे भूतकाल में हुए संतों ने और कई सारे भक्तों ने इसको स्वीकार किया है, उसके अनुसार अपना भी कार्य या अपना ही जीवन बिताया है और वो करकर उनको जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। तो ये बच्चों के मन में, उनके सहपाठियों के मन में जो प्रश्न आया कि ये सब बातें तुम्हें बचपन में ही गर्भावस्था में ही कैसे समझ में आई, तो उसके बारे में 17वें श्लोक में कहते हैं, भवताम अपि भूयान मे यदि श्रद्धधते वचः वैशारदीधि श्रद्धातः श्रीबालानां चमे यथा। तो भवताम अपि भूयात, भवताम अपि भवेत, आपकी भी बुद्धि ऐसे हो जाएगी यदि मे वचः श्रद्धधते, मेरे वचनों के ऊपर श्रद्धा रखकर आप सुनेंगे तो आपकी भी बुद्धि कैसे हो जाएगी, वैशारदी धी, आपकी भी धी यानी कि बुद्धि बहुत एक्सपर्ट बन जाएगी, वैशारदी, विशारद यानी कि बहुत स्पेशलिस्ट, विशारद या एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस या स्पेशलिस्ट। तो ये विशारद से ही ये शब्द आया है, वैशारदी धी, बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, वैशारद हो जाएगी। और ये स्त्री बालानाम च, स्त्रियां या बालकों के लिए भी, जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मैं यथा, तो ऐसा ये जिज्ञासा या श्रद्धा उत्पन्न करने के बाद फिर एक्चुअल जो उपदेश है वो ये 18 से चालू होता है। तो पहले ये ज्ञानम और धर्मस्य तत्वम, ये दो चीजें जो बताई तो ये यहां से चालू होती है 18 श्लोक नंबर से। तो अगले 5 मिनट में जितना भी सारांश कवर हो सके उतना हम करेंगे और फिर रुकेंगे। तो इसमें पहले बता दें कि जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानाम इव वृक्षस्य काले नेश्वर मूर्तिना। तो जन्माद्या, जन्म आदि ही, तो इस सृष्टि के जन्म आदि के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये शरीर के जन्म आदि के बारे में, जन्माद्या यानी कि ये शरीर में जो 6 बदल होते हैं, जायते, फिर आस्ते, विपरिणमते, तो जन्म होना, ग्रोथ होना, परिवर्तन होना, कुछ बाय प्रोडक्ट्स निर्माण होना, कम होना और फिर नष्ट होना। तो ये षड इमे भावः, ये 6 जो स्तर है, देहस्य दृष्टा, देह में ये देखे जाते हैं, न आत्मनः, तो आत्मा में ये नहीं देखे जाते। और उसके लिए उदाहरण दे रहे, फलानाम इव वृक्षस्य, जिस प्रकार देहस्य षडिमे भावादृष्टा, वृक्षस्य अपि षडिमे भावादृष्टा, वृक्ष के फलानाम, वृक्ष के फल में भी ये 6 चीजें देखी जाती है, किसके द्वारा, कालेन ईश्वर मूर्तिना। तो भगवान का ये मूर्तिमान रूप काल के द्वारा, जैसे वृक्ष बना रहता है लेकिन फल कुछ 3-4 महीने में वो आते भी है और पकते भी है, गिर भी जाते हैं, लेकिन वृक्ष बना रहता है, सालों साल बना रहता है। तो ये एक रिलेटिव एग्जाम्पल है, ये कुछ सालों के बाद वृक्ष भी नष्ट हो जाता है, लेकिन अभी समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण है कि ये फल जो है 1 साल में 3 महीने के अंदर ही उनका ग्रो, जन्म होना, नष्ट होना, ग्रोथ, ये सब होता है। तो उसी प्रकार से ये शरीर में हो रहा है लेकिन आत्मा इससे अलग है। तो आत्मा के गुण क्या है, वो 12 गुण 2 श्लोकों में बताते हैं। और आगे ये श्लोक आता है जो हमने गाया था। तो प्रश्न आता है कि आत्मा ये शरीर से अलग है तो उसको कैसे ढूंढना है, तो वो आत्मा को ढूंढने के लिए यह उदाहरण है, जहां जिस प्रकार हेमकार यानी कि एक गोल्ड स्मिथ या भूवैज्ञानिक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जियोलॉजिस्ट कि उसको पता है कि ये जमीन में या पत्थर में ये सोने के कण जो चमक रहे हैं उनको कैसे प्राप्त करना है। तो जिस प्रकार ये जियोलॉजिस्ट को पता है, उसी प्रकार से ये देह के अंदर भी जो आत्मा या परमात्मा है उनको कैसे प्राप्त करना है, ये आत्मविद आत्मा के बारे में जानने वाला या योग दूसरा शब्द है आत्मयोगी ही, तो आत्म के साथ संबंध प्रस्थापित करने की जो पद्धति है वो जानने वाला। तो दूसरा एक उदाहरण है, जैसे दूध में घी है लेकिन वो दिखता नहीं है, तो दूध के ऊपर कुछ प्रक्रिया करने के बाद वो घी दिखने लगेगा। तो ये एक दूसरा उदाहरण है, ऐसे ये सोने का खान से प्राप्त करने का और घी को प्राप्त करना। तो जिसको विधि पता है, वो अच्छे ढंग से पालन करता है विधि का, वो ये आत्मा या परमात्मा इन दोनों को वो देख सकता है। तो ये देह क्या है, ये 24 तत्वों से बना हुआ, अष्टो प्रकृतयः प्रोक्तस् त्रय एव हि तद्गुणाः विकारः षोडशाचार्यः पुमान एकः समन्वयात्। तो ये 24 तत्वों के अंदर समन्वयात पुमान एकः एक आत्मा स्थित है। ये देह तो ये 24 तत्वों का सर्वसंघातो, और ये देह दो प्रकार के हैं, जगत यानी जंगमम और तस्थु यानी कि हिलने वाला, चर अचर ऐसे दो प्रकार के देह हैं। और इसमें ही अत्र एव मृग्यः, मृग्यः यानी कि सर्च करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। और अन्वेषण के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी विधि, न इति न इति इति अतत त्यजन, जो तत् नहीं है उसको त्यागते हुए, ये नहीं है ये नहीं है ये भी नहीं है, ऐसा त्याग कर ये आत्मा की खोज करनी चाहिए। तो कोई बोलेगा कि ये शरीर ही आत्मा नहीं है, तो ये शरीर को ही त्याग दो, शरीर को ही त्याग देंगे तो क्या बचेगा, शून्य ही बचेगा, तो ये संभव नहीं है। तो ये सर्च करते वक्त उषतात्मनः, तो बहुत सूक्ष्म शुद्ध स्तर होने वाली जो बुद्धि है उसके द्वारा अन्वय व्यतिरेकेन विवेकेन, अन्वय और व्यतिरेक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे ये मनी और धागे का उदाहरण, मनियों में धागा है ये अन्वय, और धागे के ऊपर मनी है ये व्यतिरेक। तो ये देह में परमात्मा है और परमात्मा में ये देह है, तो देह में परमात्मा है ये अन्वय और परमात्मा में देह ये व्यतिरेक। और अगर ये आत्मा जब तक ये शरीर में है तब तक कुछ वृत्तियां हैं, कुछ एक्टिविटी करने की क्षमता है, और जब ये आत्मा शरीर से चली जाती है तो वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा उषता आत्मना, ये बुद्धि को ठीक ढंग से लगाना चाहिए विवेक अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। और फिर स्वर सर्गस्थान समान समामनायैर विमृशद भी असत्वरही, असत्वरही यानी कि बहुत पेशेंटली विमृश यानी कि बहुत बहुत गंभीर विश्लेषण या चिंतन करते हुए ये सब करना चाहिए। तो ये बुद्धि का स्तर, तीन स्तर कैसे है, स्वप्न सुषुप्ति और जागरण। तो ये तीन बुद्धि के स्तर है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे ही तीन स्तर है, आत्मा के ही तीन स्तर है। जिस प्रकार वायु गंध को बहा के लेके जाती है तो ऐसा लगता है कि ये वायु ही सुगंधित है, लेकिन ये सुगंध अलग है और वायु अलग है। तो उसी प्रकार ये आत्मा अलग है और ये बुद्धि के जो तीन अवस्थाएं हैं वो अलग हैं। तो ये सब टेक्निकल नॉलेज ये बचपन में ही प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को सिखा रहे हैं कि जो नॉलेज आजकल वयस्कर व्यक्तियों को समझना बहुत टफ जा रहा है, ये बातें प्रहलाद महाराज ने अपने बच्चों को या फ्रेंड्स को बचपन में ही सिखाई, उनको तो गर्भ में ही पता चली और बाकी लोगों को थोड़ी देर समय बाद बता रहे हैं। तो बहुत ये आगे भी बहुत अच्छे श्लोक हैं, आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। और आज के दिन हम भगवान नरसिंहदेव को या प्रहलाद महाराज को प्रार्थना कर सकते कि ये जो नॉलेज है इतना अच्छे ढंग से उन्होंने अपने सहपाठियों को सिखाया, ये हम भी अच्छे ढंग से पढ़े और हम भी ये नॉलेज से ज़रा प्रेरणा प्राप्त कर कर उन्होंने जिस प्रकार तीव्रता से भक्ति की उसी प्रकार से हम भी भक्ति करने का ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।